ओम शांति। सभी एक हाथ की ताली बजाकर भाई साहब का हमारे बीच में हार्दिक स्वागत है। बाबा है शिव बाबा ज्ञान का सागर। मम्मा को हमेशा बाबा कहते थे ज्ञान की देवी, तो स्वयं ज्ञान की देवी सरस्वती भाई साहब के पास पहुंची हुई थी। भाई साहब का अनुभव सुनना, खुद मम्मा चल करके, वो भी बैल गाड़ी पे बैठ करके भाई साहब के गांव गई थी। क्यों गई थी? इस श्रेष्ठ महान आत्माओं को वहां से निकालने के लिए। एक हमारी दीदी सरोज दीदी है, साथ में भाई उनके राजू भाई जी है। तो ऐसी महान आत्माओं को कहां से उस ज्ञान देवी ने ढूंढ करके निकाला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पास एक छोटा सा गांव है, उस गांव से निकल करके विश्व पटल पर इतनी बेहद की सेवाओं के लिए निमित्त बनाया। उसके पीछे भाई साहब का विशेष जो कारण, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने का आपको सौभाग्य मिला। हम सभी 24 घंटे में कितनी बार मुरली पढ़ते हैं? एक बार, दो बार, तीन बार, है ना? सबकी गिनती है। अगर मैं भाई साहब से पूछूं तो कहेंगे बुद्धि में क्या चलता रहता है इनको, हा? सारा दिन मुरली का ही चिंतन। क्यों? क्योंकि इतने सारे विश्व की सभी आत्माओं को बाबा के एक एक महावाक्यों को भेजना समय पर। विश्व एकता, हम सभी बड़े नाच से क्या कहते हैं, हमारा सचमुच में ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। सारे विश्व में एक दिन में एक जैसी पढ़ाई, सारे विश्व के कोने कोने में कहीं भी जाकर पढ़ो, एक जैसी पढ़ाई होती है। तो उस पढ़ाई को एक दिन में एक जैसा पहुंचाने के लिए पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे कितना पुरुषार्थ होता है, पोस्ट के द्वारा, मेल के द्वारा, कैसे एक एक बच्चे भी उस मुरली से वंचित न रह जाए, उसका पूरा ख्याल करते हुए ज्ञान का मनन चिंतन करके, ज्ञान के रत्नों से संजोग करके हमारे बीच में पहुंचाने वाले हमारे भाई साहब आदरणीय राजू भाई जी तो आज हमारे बीच में है। तो ज्ञान आत्मा को, संतुष्ट आत्मा को भरपूर करने वाली ज्ञान रत्नों की तो सेवा करती है, लेकिन सेवा के लिए बाबा ने एक और सेवा के लिए आपको निमित्त बनाया है। तो ग्राम विकास पेट में क्या कहते हैं, वाणी और वाणी के साथ साथ बाबा के बच्चों को क्या चाहिए, ब्रह्मा भोजन अगर सही न मिला तो वो भोजन हमारा सात्विक भोजन तो हम सभी स्वीकारते हैं, लेकिन उसमें भी योगिक खेती का, आप सभी जानते ना ग्राम विकास विभाग की आप सेवाएं जो संभालते, योग के माध्यम से बिना खाद के कैसे उपजाऊ निकाला जाए, ये भी आज सबसे ज्यादा डिमांड। मैं तो समझती हूँ भाई साहब, सारे हमारे विंग्स की सबसे बड़ी सेवा है इस समय, तो सबसे ज्यादा डिमांड अगर है तो ग्राम विकास सेवा को लेकर के, यौगिक खेती को लेकर के, किसान से लेकर के और एक किंग तक भी, हर एक के पेट में जाने वाला भोजन कैसे सात्विकता के साथ साथ, शुद्धता के साथ, यौगिक रीति से कैसे जाए। कितने अच्छे अच्छे रिसर्च आपने किया है, इसकी ट्रेनिंग लेते भारत के कोने कोने में जाकर तो संदेश देते ही हैं, लेकिन भारत के कोने कोने से यहाँ लोग आकर के ट्रेनिंग लेते हैं। तो इससे महान सेवा के लिए निमित्त आत्मा हमारे भाई साहब राजू भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हुए आज उनसे निवेदन करेंगे, मनसा द्वारा सकाश कैसे दे, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय राजू भाई जी।
ओम शांति। सभी बाबा के इस बेहद घर में बाबा की सकाश से खींच करके आए ऐसे ना, बाबा की दादियों की तपस्या स्थली मधुबन है, और बाबा ने जिस प्रकार से बच्चों को सर्च लाइट दी, सकास दी, करंट दी, ये शब्द जो है ना तीनों कब निकले पता है? मुरली में कब से शब्द आए? 68 में जब हमारे यज्ञ के बड़े भाई विश्वकिशोर दादा बीमार हुए और बॉम्बे में उनका इलाज चल रहा था, तो एक दिन उनको बहुत दर्द हुआ, पेन हुआ, ऑपरेशन छोटा ही था लेकिन, तो बाबा को जब समाचार मिला तो बाबा ने रात भर जग करके बच्चे को सकास दी, सर्च लाइट दी, उस दर्द को खींच लिया। तब से लेकर के बाबा के मुरली में आया कि बच्चे आपको भी बहुत दुनिया के अंदर दुख दर्द बढ़ रहा है, बहुत आत्माएं परेशान हैं, अशांत हैं, इनको सकास दो, मदद करो, जो भटक गई हैं उनको सर्च लाइट दो, रास्ता दिखाओ। हम सब बाबा के बच्चे अनेक प्रकार की सेवाएं तो करते ही हैं, जिसमें तन मन धन, कोई प्रदर्शनी करता है, कोई सम्मेलन करता है, कोई प्रभात फेरी निकालता है, आज विंग वाले बड़े वैरायटी प्रोग्राम रखते हैं, अभियान निकालते हैं, बहुत सारी सेवाएं हो रही हैं। और ब्राह्मण आत्माएं समझती हैं कि मनसा सेवा तो बहुत सहज सेवा है, सहज है, हम तो मनसा सेवा करते हैं। और बाबा भी कहते हैं चाहे बीमार हो, बिस्तर पर हो, आयु बड़ी हो, मनसा सेवा तो कर सकता है। लेकिन जब सेवा शब्द आता है तो सेवा करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अगर आपको कोई स्थूल में भी कहा जाए ये 4 बाल्टी पानी इधर से इधर पहुंचा दो, ये भोजन की तपेली इधर से इधर पहुंचा दो, कहेंगे भाई मेरी तबीयत, मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं है जब मैं ये सेवा कर लूं। तो सेवा के लिए शक्ति की जरूरत होती है, इसलिए स्थूल सेवा में हम शरीर को शक्तिशाली समझते, लेकिन बाबा कहते हैं मनसा सेवा के लिए मन बहुत शक्तिशाली चाहिए, मन आपके कंट्रोल में चाहिए, संकल्प शक्ति, इस पर आपका पूरा ही अधिकार चाहिए। ऐसे नहीं जो आया सोच रहे हैं, इधर उधर के संकल्प कर रहे हैं। मनसा सेवा का पहला आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, शुभ भावनाएं, जितनी हमारे अंदर सब की कल्याण की, सबका भला हो, सब सुखी हों, सब दुखों से छूट जाएं, अंदर की भावनाएं कैसी हैं, तब तो हमारी मनसा वहां तक पहुंचेगी। कई लोग सेवा करते हैं मनसा की, इसकी सेवा करेंगे, योगदान देंगे तो ये सहयोगी बनेगा, ये सेंटर बना के दे देगा, ये साधन ला के दे देगा, इसके लिए सेवा करते हैं क्या? मनसा सेवा जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे दिन आएंगे जो आप वाचा सेवा नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले से ही मनसा सेवा की प्रैक्टिस करो, मन पर आपका पूरा कंट्रोल हो और मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प विकल्प ना हो। अगर व्यर्थ ही चल रहा है तो सेवा क्या करेगा? इसलिए पहले मन को शक्तिशाली बनाने के लिए 2 बातों पर ध्यान देना। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए कहते हैं एक्सरसाइज करो, कुछ आसन प्राणायाम करो, सैर करो, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, दवाई से भी ज्यादा सहयोग एक्सरसाइज का मिलता है। इसलिए हम सबको बाबा ने कहा बच्चे मन की एक्सरसाइज करो, मन को अभी अभी साकार से आकारी, आकारी से निराकारी वतन की सैर कराओ, ड्रिल करो। करते हैं ना 500 रूपों की ड्रिल, कितने समय से बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं। ये ड्रिल करेंगे तो अपने आप मन कंट्रोल में आएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। अब हमारा जो एक बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है कि आपको मालूम हो, जब 77 में दादी जी विश्व सेवा पर विदेश गई थी पहली बार, 77 में दादी प्रकाश मणि जी गई थी, तो वहां से वापस जब आई तो उनको आया कि कोने कोने में बाबा के बच्चे बैठे हैं, सबको मदद करनी चाहिए, कुछ सहयोग देना चाहिए। कई प्रकार की प्रॉब्लम उनके सामने आती हैं, तो दादी ने आकर के यहाँ इंटरनेशनल योग शुरू कराया 3rd संडे का, कि सब ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हैं अगर सब एक संकल्प में स्थित होकर के 1 घंटा योग करें तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे, कई कमजोर आत्माओं को उसकी शक्ति मिलेगी, कईयों की परेशानियां दूर होंगी। तो ये कार्यक्रम मुझे याद है मधुबन में जब पहला रिकॉर्ड बजा था तो हम सब कारोबार छोड़ करके ऐसे जहां थे जो कर रहे थे सब बंद, तो हम एकाग्र होकर के 3 मिनट योग किया। फिर 5 बार वो अभ्यास करने की ड्रिल कराई गई, समय प्रसमय 9:30 बजे करो, 10:30 बजे करो, फिर 12:30 बजे करो, 5:30 करो, फिर 7:30 करो, फिर 9:30 करो, ऐसे ये 5 बार फिक्स किया गया। मुरली के बीच में भी 1 बार रखा गया 7:00 बजे। लेकिन दोबारा जब दादी गई तो कहती है कि हर घंटे 1 मिनट करना चाहिए, उससे आत्मा चार्ज हो जाएगी, क्योंकि बहुत कारोबार में व्यस्त होते हैं। अगर हम 1 मिनट भी मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, कुछ नहीं सोचने की जरूरत है, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं एक लाइट हूं, मैं आत्मा एक लाइट शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के 1 मिनट के लिए इस शरीर से डिटैच हो जाओ। शरीर से डिटैच होते ही परमात्म करंट का अनुभव होगा। करंट कैसे लगती है? रबड़ वाले पर करंट नहीं लगती है, शरीर ही बनेंगे तो करंट आएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि बीच बीच में हम बाबा की करंट का अनुभव करने के लिए इस शरीर के भान से डिटैच होने का अभ्यास करें, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अलग है, मैं अलग हूं। योग की सबसे गहरी स्टेज जो है यथार्थ योग, जिसमें देह और देही, शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभव होने लगे, इसका भान उतर जाए मैं अलग हूं। और ज्यो शरीर स्थिति में हम बैठ जाएंगे बाबा की करंट ऐसे आएगी, जाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा की शक्तियां तो हैं ही चारों तरफ, जहां बच्चे हैं वहां बाबा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कई बार बाबा की मूल्यां सुने ना, अभी लास्ट में बाबा कहते हैं बाबा का निवास तो बच्चों के दिल में है, जहाँ बहुत प्यार है, बहुत प्यार से कहते मेरा बाबा, मीठा बाबा, तो बाबा उस स्थान पर हाजिर हो जाता है। तो हम सब जब शरीरी स्थिति में स्थित होकर के बाबा कहते हैं तो करंट का अनुभव होता है, जैसे सब शक्तियां अंदर आ जाती हैं और बहुत शक्ति आ जाती है। फिर कोई भी काम करो, 1 घंटा 2 घंटा करते रहो, थकावट नहीं होती। तो पहले हम अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें, मन की एक्सरसाइज। और दूसरी बाबा कहते हैं परहेज बहुत चाहिए, अगर परहेज नहीं है तो कुछ न कुछ शरीर को बीमारियां आती हैं। कितनी भी अच्छी डॉक्टर दवाई दे लेकिन परहेज नहीं कर रहे हो तो बीमारी खत्म नहीं होती। इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को कुछ बातों की परहेज बताई है। अगर मन को शक्तिशाली बनाना है तो किस चीज की परहेज चाहिए? सबसे जरूरी बड़ी परहेज है, जिसको बाबा पांच शब्दों में कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, तीन के साथ थिंक नो इविल, डू नो इविल। जो इविल है माना जो व्यर्थ है, उसको मुझे देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, सोचना भी नहीं उसके लिए, और करना तो है ही नहीं। तो सबसे बड़ी इविल बात कौन सी है? कौन सी है? देह को देखना, देह भान में आना, देह मान में आकर के वार्तालाप करना, सुनना, सुनाना। बाबा कहता ये सब इविल है। अगर तुम इसकी परहेज कर लो, मुझे देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, क्योंकि दुनिया टोटल बॉडी कॉन्शियस में, फुल देह मन में है। देह मन ही बनने का कोई ने कल्प में ज्ञान ही नहीं दिया, केवल संगम ऊपर बाबा ने आकर के पहचान दी, आप एक आत्मा हो, आप खेल के देखे पार्ट बजाने के लिए शरीर में आई हो, आप इससे अलग हो जाओ, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहो, आधार लो, कर्म कर लो, कर्म करने के बाद फिर अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसलिए ये जो इस अभ्यास है, ये हमको बहुत शक्तिशाली बना देता है। बार बार बीच बीच में मैं आत्मा इस शरीर से अलग, एक निराकार ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप हूं, और ये सब आत्माएं जो पार्ट प्ले कर रही हैं, ये सब एक्टर्स हैं, खिलाड़ी हैं, पार्ट बजाने आए हैं। नेचुरल नेचर जैसे देह मन की बन गई है, ऐसे अभी आवश्यकता है आत्म अभिमानी बनाने की, नेचर नेचुरल बन जाए। आत्मा को देखो, आत्मा देख के बात करो, ये आत्माएं पार्ट बजा रही हैं। स्नेह भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा, हम एक घर के वासी पार्ट प्ले करने आए हैं, कहीं पर भी कोई नीचे ऊपर हो रहा है कोई बात नहीं, इसके कुछ हिसाब किताब बने हो, संस्कार हैं। मुझे बाबा ने कहा है बच्चे, किसी के भी संस्कारों को, कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, इसकी परहेज करो, नहीं तो वो देखेंगे ना तो देखने की एक आदत बन जाएगी और वो सारी उनकी कमियां अपने अंदर आ जाएंगी। मम्मा का मास्टर रहा, इसलिए मम्मा की तीन चार बातें मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे तो हमने पत्र पुष्प में बहुत सारी बातें मम्मा की लिखी हैं, इस बार भेजी हैं जून मास में। मम्मा एक बहुत सुंदर शिक्षा देती थी कि मेरे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं अपनी कमी कमजोरियों को निकालने की। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि मेरी कमी मेरे साथ जाए, सब निकालना चाहते हैं, लेकिन एक निकालता है और दूसरा अगर उसको अपने पास नोट करता है तो वो कीचड़े का डब्बा बन जाता है। इसने निकाला, वो निकालना चाहता, वो खत्म करना चाहता है, और देखने वाला उसको देखता है, चिंतन करता है, फिर इधर उधर वर्णन कर लेता है। तो अगर हमारी एक नजर बन गई किसी की भी कमी कमजोरियों को देखने की, अवगुण दृष्टि की, तो मन के अंदर वही वही ख्यालात, वही वही विचार चलने के कारण मन कमजोर हो जाएगा, शक्ति नहीं रहेगी उसके अंदर, क्योंकि व्यर्थ सोचने की आदत, देखने की आदत, बोलने की आदत, ये ऐसा करता वैसा करता, इसने ऐसा किया उसने, कनेक्शन नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है मेरे से, ठीक भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन बस सोच सोच करके अपना, अपनी शक्तियों को नष्ट करना और दूसरों के आगे सुना करके उनके भी मन को दूषित कर देना, ये बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा पाप होता है सूक्ष्म में। इसके कारण हम योग में बैठते हैं तो हमारा योग ही नहीं लगता, कहते पता नहीं क्यों नहीं योग लगता है, मैंने कोई भूल तो की ही नहीं। लेकिन सूक्ष्म जो किसी की कमियों को ग्रहण किया, अवगुण देखे, उसका अंदर चिंतन कर लिया, वो चिंतन हमारे योग के अंदर बहुत बड़ा विघ्न है। इसलिए सब ध्यान देना, हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, भले कोई कैसी भी है, उसकी विशेषताओं की विशेषताओं पर हमारी नजर जानी चाहिए। हर तो विशेष है ना, बाबा कहता कोई ऐसा मेरा बच्चा नहीं जिसके अंदर कोई भी विशेषता ना हो। कोई भी एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो? कम से कम वो बाबा तो कह रहा है पहचान करके। निराकार को पहचानना, उसको बाबा शब्द से संबोधित कर, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो वो भी तो एक विशेषता है उस आत्मा की। और उसके नाम से वो अपने जीवन को पवित्र बना रहा है, योगी बना रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। इसलिए कोई को किसी भी प्रकार से उसके संस्कारों को, वर्तमान को देख करके उससे घृणा, नफरत, वैर नहीं रखना। शुभचिंतक वृत्ति। सकाश के तीन चार अर्थ बाबा ने बताए हैं। अभी दो तीन दिन पहले जो मुरली चली, बाबा ने कहा किसी को सहयोग देना, किसी का उमंग उत्साह बढ़ा देना, किसी को शक्ति दे देना, सूक्ष्म में अपनी मनसा से कोई को सहारा दे देना, ये सकाश है। अब सकाश वैसे कहते हैं जैसे कोई तेज आग हो, तेज ज्वाला जल रही हो, तो उसकी जो आँच है वो दूर दूर तक प्रभाव डालती है गर्मी के रूप में। कहते सकाश आ रही है, आँच आ रही है कहीं से, उस आँच को सकाश कहते। तो जितनी हमारी शक्तिशाली, एक टिक एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी याद होगी, बैठ जाओ ऐसे, और वो याद के जो प्रकंपन हैं, जो उसकी शक्तियां हैं, वो दूर दूर तक जाती हैं और सकाश का काम करती हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने तो रात को जाग करके, बांधेलियों के पत्र आ गए, बहुत बेचारी परेशान है, बाबा मैं आपसे कब मिलूंगी, मेरे आगे ऐसे ऐसे बंधन है। तो बाबा कहता था बच्चियां पत्र लिखती हैं, बाबा की नींद फिट जाती है। बाबा को बहुत ख्याल चलते, साकार में तो ब्रह्मा बाबा को चलते थे। तो ब्रह्मा बाबा फिर कहते थे मैं बच्चों को रात भर सकाश देता हूँ, करंट देता हूँ। ऐसी आत्माएं जो इस वायुमंडल में भटक गई उनको मैं सर्च करता हूँ, कहाँ कहाँ है, सर्च लाइट देता हूँ। आप बच्चे भी अब वर्तमान समय मेरे समान अशरीरी स्थिति में स्थित होकर के बहुत शुभ चिंतक वृत्तियों की सकाश देने की सेवा करो। लेकिन सकाश देने के लिए आपको ऊंचाई में आना पड़ेगा। जब ऊंचाई पर कोई चीज हो, एक लाइट लेकर के आप ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएं, तो उस लाइट की रोशनी, उसकी शक्तियां अपने आप नीचे चारों तरफ जाती है, कहीं वो जाता नहीं देने के लिए। अपने ऊंचे स्थान पर स्थित है, और ऊंचा स्थान संगम युग पर हम सब ब्राह्मणों को मिला हुआ है। कौन सा? सूक्ष्म वतन, बाबा जहां रहता है। बार बार हम इस साकार वतन से लाइट के वतन में, फरिश्तों की दुनिया में है। ये खेल है केवल मर्ज और इमर्ज का, इस बात को ध्यान देना। आत्मा कहीं जाती नहीं है। अब ट्रांस में गई, मैं बाबा के पास गई, बाबा ने ये दिखाया, बाबा ने ये किया, कौन गया भाई? आत्मा तो शरीर से निकल नहीं सकती, तो शरीर में है, पिंजरे में है। लेकिन स्मृति और विस्मृति का स्विच है, जैसे स्विच है, लाइट है इसके अंदर, अगर थोड़ा सा ऊपर कर दो तो अंधेरा हो जाएगा, ऑन कर दो तो रोशनी हो जाएगी। ऐसे ही इस संसार के जो संकल्प हैं, जो बातें अंदर अंदर चल रही हैं, उनको हम इस मर्ज कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। और बाबा के वतन को हम ऐसे ही मर्ज कर लेते जैसे हम बाबा के सामने बैठे हैं। लाइट का वतन है ये, फरिश्तों की दुनिया है, और इमर्ज करके उस पूरे दृश्य को सामने अनुभव करते हैं। इसलिए संदेशियां कहती मैं बाबा के पास गई, तो बाबा उनके सामने वो दृश्य पूरा इमर्ज कर देता। अब जिसकी जैसी कैचिंग पावर है वैसा ही वो संदेश सुना रहा है। कोई को उसकी लाइट अच्छी लग रही है, कोई को बाबा के भाव को समझना, क्योंकि आवाज तो है ही नहीं, बाबा की वाणी तो मूवी है, सूक्ष्म वतन में तो मूवी चलती है, टॉकी है ही नहीं। अब मूवी को जैसे ओठ चल रहे हो उसकी आवाज को कैच करना बहुत क्लीन बुद्धि चाहिए, बहुत एकाग्र बुद्धि चाहिए, तो बाबा की आवाज को समझ सके। तो जिसके जिस पर जिसका जिस चीज पर ध्यान जाता है उसी का वो दृश्य इमर्ज हो जाता है उसके सामने। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को इस समय एक है ट्रांस में जाकर के सूक्ष्म मथन का अनुभव करना, और दूसरा एक दिव्य बुद्धि के आधार से, बुद्धि को भी नेत्र कहा जाता है, बुद्धि दिव्य नेत्र है, और उस नेत्र से जैसे हम बाबा के वतन को देखते हैं, बाबा की दृष्टि का अनुभव करते हैं, फरिश्तों की दुनिया का अनुभव करते हैं, लाइट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, और वहां से हम फिर फरिश्ते रूप से पूरे ग्लोब को सामने इमर्ज करके सर्च लाइट देते हैं, सकास देते हैं, और जिनको करंट की जरूरत है उनको करंट देते हैं। कई बीमार होते हैं ना, उनको करंट से ठीक कर देते हैं। कहीं अंधेरा होता है, भाई करंट चाहिए यहां पर। तो बाबा हम सब बच्चों को जैसे वतन से इस समय कहां कहां के बच्चों की पालना कर रहा है, देश विदेश में हजारों बच्चे, आपको आश्चर्य लगेगा कि जब तक बाबा अव्यक्त रूप में आते रहे 2017 तक, तब तक ब्राह्मणों की संख्या केवल 9 लाख के लगभग थी। लेकिन जब कोविड आया 17 के बाद 18 19 20 और बाबा का अव्यक्त पाठ रुक गया, उसके बाद मैंने देखा आज 7-8 लाख लोग बढ़ गए, ब्राह्मण बन गए, माना 9 की बजाय 14-15 लाख हो गए। क्या वृद्धि हुई, कैसे वृद्धि हुई? अब ये सब प्रभु लीला सूक्ष्म वतन से शुरू हुई है। अब इस बात को ब्राह्मण भी कहीं नहीं समझ पा रहे हैं, कोई सेवा करे या न करे। ऑनलाइन तो ज्ञान लेकर के कोर्स लेकर के कोई ब्राह्मण बने। एक दिन मैं अमेरिका में क्लास करा था ऑनलाइन, तो पहले ही बहन हमको परिचय जब दे रही थी तो बोलती, भाई जी आपके पास आपके क्लास में ऑनलाइन 90 लोग नए जुड़े हुए हैं अमेरिका में। 90 लोग नए कहाँ से आए? बोलिए सब कोविड में ऑनलाइन कोर्स किया है, और कोर्स करने के बाद सब मुरली सुन रहे हैं, सब नियमों का पालन कर रहे हैं। न बाबा को देखा है, न मधुबन देखा है, न दादियों को देखा है, लेकिन ये सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा अपना कार्य बहुत फास्ट गति से कर रहे हैं, करा रहे हैं। स्थापना तो संपन्न उनको करनी है ना, हमसे ज्यादा फिक्र तो उसको है ना, हमको क्या है। अभी वर्तमान समय बाबा अपने बच्चों को अपना साथी सहयोगी बनाना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कुछ समय इस अव्यक्त साकार की बातों से इस विस्तार को समेटो। बहुत बुद्धि को विस्तार दे दिया, सेवाओं का विस्तार तो हो रहा है, होने दो, लेकिन जहां आपकी बुद्धि फंसी हुई है, देह में, संबंधों में, साधनों में, व्यापार में, संस्कारों में, बुद्धि को चेक करो। अगर कहीं भी बुद्धि फंसी हुई है तो हम बाबा के साथ विश्व कल्याण की सेवा में सहयोगी नहीं बन सकेंगे। फ्री करो अपने आप को, कुछ समय तो फ्री करो। शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा बहुत है, ज्यादा नहीं फंसो। 8 घंटा शरीर निर्वाह को दे दो, लेकिन उसके बाद कम से कम लक्ष्य रखो 4 घंटा तो हम कम से कम बाबा के पास जाएं, सूक्ष्म मतन में बैठ करके बाबा के साथ बैठ के ऊपर से सकास देने की सेवा करें, लाइट होकर के लाइट की ड्रेस में अपने बहुत पवित्र शुद्ध संकल्प, सबका भला हो, सब इन दुखों से मुक्त हो जाएं, मुक्ति की सकास मिल जाए। बहुत अच्छी ऊंची भावनाएं, और वो स्थिति बिल्कुल लाइट स्थिति, कोई बोझ नहीं है ये, वो किसी बात का भी चिंतन नहीं है। जब हम सब चिंतनों से फ्री होकर के एकदम बाबा के पास बैठ जाते हैं, तब वो सकास अपने आप चारों ओर जाती है। जैसे यहां हम बैठे हैं, कांच के ऊपर सूर्य की किरणें आ रही हूं, कांच के ऊपर और वो कांच के द्वारा कहीं दूसरे स्थान पर जा रही हो, कितनी तेज किरणें होंगी वो? सूर्य की किरणों को कांच के माध्यम से जब रिफ्लेक्ट किया तो उसने एनर्जी पैदा कर दी, वहां आग लगा दी, सोलार बन गया, एनर्जी आ गई और उसको हम साधनों में यूज कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं मैं मनसा सेवा करता हूं, और मैं कहता हूं मैं मनसा सेवा क्या करूंगा, मैं अपने मन को स्वच्छ कांच की तरह बना दूं बस, इसमें किसी भी प्रकार का व्यर्थ का मिट्टी धूल कीचड़ा नहीं चाहिए। कांच पर अगर गंदगी है, कितना भी पावरफुल कांच है, किरणें आएंगी वहां रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो। इसलिए सोलार जहां लगाते हैं ना, उस कांच की रोज सफाई करते हैं, उसकी मिट्टी धूल हटाते हैं, उसको धुलाई करते हैं, साफ स्वच्छ कांच और सूर्य की तरफ कंटिन्यू है, उसको ऐसी विधि से सेट करते हैं जो जैसे सूर्य परिक्रमा करता है तो ऐसे कांच भी उसका घूम रहा है, कंटिन्यू उसकी किरणें उसके ऊपर आ रही हैं और वो एक जगह आ रही हैं और बाजू में रिफ्लेक्ट कर रही हैं, पानी के पाइप के ऊपर वो भाप बना रहा है, बैटरी चार्ज कर रहा है। यही है मनसा सेवा की विधि, समझ गए? ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना? अपने मन बुद्धि को बहुत साफ स्वच्छ, कुछ नहीं सोचना ज्यादा, एक संकल्प कर लिया भाई इतनी आत्माओं की आवाज आ रही, सब दुखी है, परेशान है, कलयुग अति की ओर जा रहा है, सब प्रकार से हाहाकार का वातावरण है, प्रकृति के पांचों तत्व अपना तांडव दिखा रहे हैं, तमोगुण ही है और व्यक्ति के अंदर तो पता नहीं ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा क्रोध चल जड़ में आ गया, सबके अंदर आ गया। ऐसे हालत में बाबा कहते बच्चे इनको थोड़ी मदद करो, सकास दो शांति की, शक्ति की, प्रेम की, शुक्रिया तो करो भाई तूने बहुत सहयोग दिया मुझे, प्रकृति के पांचों तत्व क्या करेंगे, तुमने बहुत मदद की, 5000 साल सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक, अगर प्रकृति साथ नहीं देती तो आत्मा क्या करती, लेकिन प्रकृति के अभी अधीन हो गई, मालिक बन करके यूज कर रही थी, उसको सहयोग मिला था प्रकृति का, और आज प्रकृति उसको तंग कर रही है क्योंकि वो प्रकृति के अधीन हो गया। उस बाई प्रकृति के पहले अपनी प्रकृति को तो देखो, इंद्रियों के गुलाम है व्यक्ति, जब तक हम खुद इंद्रियों के गुलाम हैं, आंख नाक मुख कान हाथ जिभ्या सब चीजें उसके अधीन हो गई आत्मा, ये अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता, कोई को कनरस कोई को मुक्का रस, हर प्रकार के रसों में आत्मा भटक गई। अब ये प्रकृति, शरीर की प्रकृति ने आत्मा को पुरुष को अपने अधीन कर लिया, अगर ये पुरुष आत्मा फिर से मालिक बनकर के इस प्रकृति पर कंट्रोल कर ले, इसलिए बाबा हमें योग सिखा रहा है, स्वराज्य अधिकारी बना रहा है, बच्चे तुम राजा हो, किसके? इन कर्म इंद्रियों के राजा हो, मन बुद्धि संस्कार के राजा हो, जो सोचना चाहूं वही सोचूं, ऐसे नहीं चल रहा है क्या करूं कंट्रोल ही नहीं होता। इसलिए बहुत अच्छे होमवर्क बाबा देता है, इस बार भी बाबा ने मुरली में कहा बच्चे जो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन है इसको समाप्त करना है तो कम से कम जो समर्थ बनाने वाली बातें आपको मिल रही हैं, आज मुरली के अंदर इतने सारे होमवर्क जा रहे हैं, अलग से होमवर्क जा रहे हैं, कम से कुछ तो याद रखो, कुछ तो चिंतन में लाओ, वरदान है, स्लोगन है, अभ्यक्ति सारे हैं, और भी अलग से योग के लिए टॉपिक पर पॉइंट जा रहे हैं, मनसा सेवा के पॉइंट इस समय जा रहे हैं, इनका चिंतन करो, इनके लिए समय तो दो। अगर हम मन को काम नहीं देंगे तो मन तो भागेगा ही, व्यर्थ आएंगे ही, कंप्लेन करते वेट चलता है वेट चलता है, भाई चल रहा है तो रोको ना, कंट्रोल करो उसको, मोड़ो, मोड़ते ही नहीं है, सोचते रहते कहीं कुछ नींद ही पड़ जाती रात भर। इसलिए संकल्पों की गति पर ध्यान दो, और जो व्यर्थ है जो मेरे काम का नहीं है मुझे नहीं सोचना है नहीं देखना है, बाबा ने मना किया है, कम से कम अपने को समझाओ, अपने से बात करो, क्या सोच रहा हूँ, किस लिए सोच रहा हूँ मैं, इसको सुधार सकता हूँ, इसको ठीक कर सकता हूँ क्या। जब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ तो मैं इस पर विचार क्यों कर रहा हूँ, अपने संकल्प क्यों व्यर्थ कर रहा हूँ। तो संकल्पों को व्यर्थ को समर्थ में बदलने के लिए बाबा ने दो तीन विधियां बताई हैं मुरली के अंदर। एक तो कहा वरदान या स्लोगन, कुछ भी तो याद रखो, उसका चिंतन करो, मनन करो। दूसरा कहा रात को सोते समय सभी साफ देख के बाबा से गुड नाइट करो, हल्के होकर के सो। सवेरे उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग करो, पहले नंबर में बाबा से मिलन मनाओ, शक्ति लो, सकास लो, सवेरे सवेरे ले लो, फिर सारा दिन कारोबार में ठीक रहोगे। ये विधियां बाबा हम सबको सिखा रहा है मन को सशक्त बनाने के लिए, और सशक्त मन ही सकास दे सकता है, कमजोर मन नहीं दे सकता। वो अपने कंट्रोल में नहीं है क्या क्या सोच रहा है, और सोचता ऐसे जो नींद फिटाता है, शरीर के ऊपर उसका प्रभाव आ रहा है, कईयों का शुगर बढ़ रहा है, कईयों का बीपी बढ़ रहा है, कई इतने अच्छे तनाव में आते हैं जो सोए सोए ही ब्रेन हेमरेज हो जाता है और चले जाते हैं। सारी बीमारियों की जड़ सोचना है, संकल्प। और दादी जानकी ने हम सबको एक बात पक्की कराई लास्ट दिनों में, जब भी कोई लेके पत्र लेके जाओ, कोई समाचार लेके जाओ, डोंट थिंक, डोंट थिंक। मेरे दादी सोचना तो पड़ेगा ना, क्यों सोचता है, किस लिए सोचता है, बाबा बैठा ठीक कर देगा सब। इन्होंने अपने सोच को, अपने संकल्पों को इतना शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया, सोचा ही नहीं गलत, ठीक है सब हो जाएगा, बाबा ठीक कर देगा। ड्रामा कल्याणकारी है, क्यों तुम सोच रहे हो, कल्याण हो ही नहीं सकता है, और बाबा के बच्चों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए बहुत विशाल बुद्धि से ज्ञान को यथार्थ समझना, ड्रामा की इस कल्याणकारी सीन को यथार्थ समझना, कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कुछ तो कल्याण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। बाबा कहता है ये जो काक काक का की भाषा यूज करते हो ना कौवे की, यही व्यर्थ संकल्प की जड़ है, और जब तक इस पर आपने कंट्रोल नहीं किया है तब तक मनसा द्वारा सकास नहीं जाएगी। व्यर्थ की सकास थोड़ी फैलानी है, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है, वायुमंडल को तमोगुण से सतोगुण में लाना है। बहुत बड़ी सेवा की जवाबदारी बाबा ने अपने बच्चों को दी है। कलयुग को सतयुग बनाना है, नरक को स्वर्ग बनाना है, इसलिए समय निकाल करके सब व्यर्थ बातों से अपने को फ्री करो, समय दो अपने को, समझाओ, अपने आप के टीचर बनो। हमारी दीदी मनमोहिनी थी ना, जब कोई बात होती बड़े अच्छे अच्छे क्लासेज होते तो दीदी कभी क्लास नहीं कराती थी, मालूम ना दीदी मनमोहिनी, देखा तो नहीं होगा, देखा है दीदी के समय तो आपका इंदौर तो खुल गया था, किसने दीदी को देखा है, शक्तिबहन भी नहीं देखा। अच्छा एक पीछे बैठी बहन, कोई खड़े हो जाओ, कौन बैठा है देखें, कहां से हैं आप, सवाई माधव पर, अच्छा इधर राजस्थान के, इन्होंने देखा होगा है? इंदौर जोन है यहाँ। 83 में दीदी मनमोहिनी ने शरीर छोड़ा। दीदी मनमोहिनी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी दृष्टि से साक्षात्कार करा देना, पढ़ी लिखी नहीं थी, लौकिक की स्कूल नहीं गई थी, तो जब हम लोग आए ना तो कहती थी भाऊ अगर अपने को परिवर्तन करना है ना, कोई संस्कार है अगर उसको बदलना है तो अपने टीचर खुद बनना, अपने को खुद पढ़ाओ, अपने से खुद बातें करो। अगर बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा की मुरली सुन रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मेरा ये संस्कार क्यों मुझे परेशान कर रहा है, क्या मेरी कमी है, कहां से मेरी लीकेज है, जब तक आप एकांत में बैठकर अपनी जांच नहीं करेंगे और अपने से बातें नहीं करेंगे तब तक उस संस्कार को न मुरली चेंज करेगी न क्लास चेंज करेगा। इसके लिए आपको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और दीदी हम सबको कहती थी, देखो सुना तुमने, ठीक है, अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, लेकिन इसको अपने से लागू करो, अपने पर लगाओ कि मुझे कैसे करना है। तो एकांत में बैठ करके जब हम अपनी कमियों पर नजर डालते हैं, दिल शिकस्त नहीं होना है कि मेरे अंदर ये है मेरे अंदर ये है, लेकिन जांच तो करो। कईयों को पता ही नहीं चलता, मैं जोर से बोलता हूं इसको दुख हो रहा है, मैं चिल्ला देता हूं इसको परेशानी हो रही है, ये हमारे दैवी मैनर्स नहीं है। बहुत ध्यान देने की बात है, छोटी छोटी गलतियां हमारे पिछले संस्कारों को दिखा रही हैं। देखो इसके ये संस्कार अभी तक खत्म नहीं हुए, संस्कारों को इतनी जल्दी खत्म किया नहीं जा सकता। संस्कारों को एक शब्द देते हैं, कुत्ते की टेढ़ी पूंछ, उसको सीधा नहीं किया जा सकता। जगदीश भाई ने इस पर लेख लिखा था, पूंछ को सीधा किया जा सकता क्या? तो जगदीश भाई ने कहा ये संस्कार तो ऐसे जैसे कुत्ते की पूंछ। 10 साल 15 साल 20 साल से क्लास में आता है, मुरली सुनता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसका गुस्सा नहीं गया है, उसकी काया शीतल नहीं हुई है, उत्तेजनाएं खत्म नहीं हुई हैं, मन वही सोच रहा है, नेगेटिव व्यर्थ इधर की उधर की खुराफात। संस्कार शुद्ध कैसे होंगे? संस्कारों की शुद्धि के लिए योग ज्वाला चाहिए, साधारण योग से नहीं होगा। सोने की मिली हुई खाद, मिली हुई मुलम्मे की मिलावट, आप उससे जेवर बनाना चाहो कभी नहीं बनेगा, उसमें मिलावट है। उसके लिए सोनार के पास जाता है, वो तेज भट्टी में उसको डालता है, जब वो पिघल जाता है तो उसकी जो मैल मिलावट है वो अलग होती है और वो स्वच्छ हो जाता है। फिर कहता है अभी 24 कैरेट प्योर सोना हमारे हाथ में है, अब बताओ क्या बनाना है, क्योंकि वो मोल्ड हो जाता है। अगर मैं स्वयं को मोल्ड नहीं कर सकता किसी भी परिस्थिति में, मैं रियल नहीं हूं। अगर मेरे अंदर संस्कारों में शुद्धि आई है तो सरलता, मधुरता, नम्रता, मिलनसारिता, दिव्यता, रूहानियत, अलौकिकता, ये अनेक अनेक गुण हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, हमारे चलन में, हमारे चेहरे में स्पष्ट दिखाई देंगे, शुद्धि संस्कार। छोटी छोटी बातों में, मम्मा की दूसरी बात सुनाता हूं। मम्मा कहती थी मेरे बाबा के बच्चे बड़े समझदार हैं, बहुत मेहनती हैं, अमृत वेला उठते हैं, मुरली क्लास करते हैं, संग अच्छा करते हैं, भोजन अच्छा करते हैं, और लगातार 10 साल 8-9 मास तक करते रहते। लेकिन किसी समय कोई बात उनके दिल पसंद नहीं हुई, कोई ने उनकी इज्जत नहीं की, कोई ने उनकी बात को समझा नहीं, कोई ने उनको सत्कार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो 5 मिनट का जोश 9 मास की हुई कमाई को 1 मिनट में खत्म कर देता है। ये समझदारी है क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? इतनी मेहनत करने के बाद भी हमने अपने गुस्से को नहीं चेंज कर पाया, अपनी इच्छाओं पर हमने काबू नहीं किया, अपने अहम को नहीं मार पाया, यही तो संस्कार बन गए ना, अहम के, बहम के, ईर्ष्या के, द्वेष के, नफरत के, घृणा के, कितने संस्कार हैं और सबके अंदर कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन कोई को आप एक को प्यार से सीट दो, एक का नाम लेके उसकी महिमा कर दो, दूसरा जो अच्छा सेवाधारी है ना वो जल जाएगा कि मैं इतना करता हूं, मेरे कोई पूछता ही नहीं, ये कुछ नहीं करता, इसको इतना नाम दे रहे हैं। बहुत सूक्ष्म जेलसी, ईर्ष्या। इसलिए कोई भी ऐसी संस्कार है जो लगता है हमारे इस ब्राह्मण जीवन में रुकावट है, ये बहुत बड़ा विघ्न है जो हमें सूक्ष्म वतन, मूल वतन में जाने में विघ्न डाल रहा है, उड़ने नहीं देता है, उस संस्कार का संस्कार मुझे करना है। और उसके लिए बैठो, अच्छी तपस्या करो, बैठ जाओ एकांत में 10 मिनट 15 मिनट, अपने से बातें करो, अपने आप को देखो, दादी पता कैसे देखती थी, एक दिन दादी बैठी थी तो मैं अचानक गया, बहुत देर तक आंख मंद थी, मैं दादी जी क्या कर रही हैं आंख खुला को बताऊं ऐसे बिल्कुल इनोसेंट, मैं आज अपने हीरे को इस हीरे को हथेली पर रख करके मैं देख रही थी, मुझ हीरे में कोई दाग तो नहीं है, बहुत गहराई से चारों तरफ देखती, मुझे अपने दाग दिखाई नहीं दे रहे, तो बाबा सामने आके खड़े हो, अरे बच्ची क्या देख रही हो, ये तो बेदाग हीरा बन गया है। इतना गुप्त पुरुषार्थ करके उन्होंने ये दाग, कौन से दाग है हीरे में, आत्मा रूपी हीरे पर कौन से दाग हैं, वैल्यू दाग से खत्म कम हो जाती है ना, मुझे आत्मा में कौन से दाग हैं, जब तक बेदाग हीरा नहीं बना है और जब तक उसके लिए मैंने समय नहीं दिया है, अलबेलेपन में चल रहे हैं, ठीक है समय आएगा तो रियलाइज होगा। आज भी बाबा ने कहा धर्मराज फिर हिसाब लेगा, प्रतिज्ञा की है और फिर तुमने तोड़ी है, दिखाऊंगा फिर सजा दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो हम सब बाबा के बच्चों को मन शुद्धि के साथ साथ, मन को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ, जो ऐसे कमजोर संस्कार हैं, रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं, पता नहीं चलता है, परतों के अंदर हैं, उन संस्कारों को रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करो, और उसको परिवर्तन करने के लिए बहुत अच्छी, जैसे बाबा की लेजर किरण है ना, आजकल लेजर किरणों से ऑपरेशन तक भी करते हैं, बाबा की लेजर किरणें उस पर डालो, ये संस्कार शांत हो जाए, ये संस्कार बदल जाए, जो हमारे दिव्य संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, देवताई संस्कार हैं, वो हमारी चलन में आ जाए। इसके लिए हम सब ऐसी तपस्या करें, तब हमारे अच्छे वाइब्रेशन, हमारी अच्छी स्थिति अनेकों को परिवर्तन करेगी, उनको सहयोग मिलेगा, उनको सकास मिलेगी, वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। ये बहुत सूक्ष्म सेवा है, इसको हम मनसा सेवा कहते हैं। स्थिति हमारी बनी और सेवा अनेकों की हो गई, इसलिए सब अपनी अपनी स्थिति बनाओ, सेवा बाबा अपने आप करा लेगा, मनसा सेवा अपने आप होगी, उसके लिए हमें कहीं जाना नहीं। बल्ब जलाया है, तेज लाइट है, उसकी रोशनी भी आ रही, अंधेरा भी खत्म है, और जो ज्यादा पावरफुल बल्ब है उसकी गर्मी भी आ रही, वही शक्ति है, वही माइट है। एक बल्ब लाइट भी दे रहा है और माइट भी दे रहा है, और ये पावरफुल बल्ब अगर बाबा के याद में खो गया, बैठ गया, तो इसकी लाइट और माइट अपने आप जाएगी, जो सकास का काम करेगी, सर्च लाइट का काम करेगी, कहीं कहीं करंट का काम करेगी, लेकिन उसके लिए हमारी मन की स्थिति बहुत शुद्ध पवित्र एकाग्र चाहिए। तो सब ध्यान देना, वर्तमान समय अंतिम समय की ओर हम बढ़ रहे हैं, और अचानक के खेल हो रहे हैं, शरीर सृष्टि का अंत जब होगा हो जाएगा, लेकिन इस समय कोई के भी अंत का कोई भरोसा नहीं है। बैठे बैठे अभी अभी बहुत अच्छा है, क्लास कर रहा है, योग कर रहा है, ब्रह्मा भोजन खा रहा है, मधुबन में तो ऐसे कई सीन अभी हम देख रहे हैं, हर दो तीन महीने के बाद ऐसा एक भाई टपक जाता है, हर दो तीन महीने के बाद सोए सोए चला गया, कल परसों एक भाई खाना पीना खाया गया, सोया और चला गया, अटैक आ गया। इसी साल में मैं समझता हूँ 6-7 कुमार मधुबन निवासी, कुछ तकलीफ नहीं, कोई बीमारी नहीं, क्लास किया, खाया पिया और गया, और गया। तो ये बाबा अचानक का पाठ पढ़ा रहा है, इसलिए कहता अचानक के पहले एवर रेडी रहो, कहीं पर भी कोई भी बंधन नहीं चाहिए, किसी भी बंधन में आत्मा को बांधना नहीं है। बंधन तो जानते हो ना, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। अब हम सबको उड़ता पंछी बनना है, बस बैठो एक सेकंड में यहां से वहां पहुंच जाओ बाबा के पास। ये संकल्पों की यात्रा है, आत्मा तो यही है, उसकी जो संकल्प शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, वो विमान का काम करती है। बेटे बाबा के पास पहुंच गए, वो शक्तियों का अनुभव होने लगा। और उन शक्तियों के आधार से जब हमें मिलेगी तो कांच पर आएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ गए ना मनसा सेवा क्या करेंगे? इस कांच को मैला नहीं करना बस। कोई कुछ भी कर रहा है, ये हुआ वो हुआ, ऐसा करता वैसा करता, कर लेने दो जो कर। मुझे अपने मन बुद्धि के कांच को बहुत स्वच्छ पवित्र रखना है, जिसमें बाबा की किरणों को हम समा सकें और दूसरों की हम सेवा कर सकें। तो सभी इस समय वर्तमान समय बाबा के दो बातें जो सुना रहा हूं मैं, एक है साक्षी दृष्टा का अभ्यास, अपनी कृति अपने संकल्पों को अपने संस्कारों को स्वयं की एक्टिविटी को साक्षी होकर के देखो, अलग से देखो। देवता बनने वाला हूं मैं, मेरे अंदर वो रॉयल्टी है, वो पर्सनैलिटी है, इतना ऊंचा लक्ष्य, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट, रोज बाबा की मुरली सुना, भगवान हमें पढ़ाता है, कितना नशा है। देवताई बनने के मैनर्स मेरे जीवन में कहां तक आए हैं, वो रॉयल्टी, वो पर्सनैलिटी, वो भरपूरता, वो दातापन, कुछ नहीं चाहिए किसी से, देवता हैं हम, देवता थोड़ी है। ये मुझे मान दे, मुझे स्नेह दे, ये मुझे कुछ दे तो मैं दू, लेकर के देने वाले नहीं है। उन देवताई संस्कारों का आवाहन करो, चलते फिरते रॉयल्टी से प्रश्न दिखाई दे, कैसे चला है, तो फरिश्ता है, तो देवता है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति बहुत अच्छा पार्ट बजा रहा है। जैसे उसने रावण का पार्ट बजाया तो क्या कहते, वाह क्या इसने पार्ट बजाया, है रावण का पार्ट, लेकिन देखने वाला खुश हो रहा है पार्ट बजा रहा है। ऐसे कोई करे तो उल्टा उस पर केस कर देंगे, लेकिन स्टेज पर बजा रहा है तो ये एक बहुत अच्छा भान है कि हम सब एक्टर्स अपनी स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। जो जो कर रहा है वाह कितना अच्छा कर रहा है, अंदर से, ऊपर से नहीं कह देना, अंदर से वाह वाह। किसी के पार्ट को देख करके मैं क्यों डिस्टर्ब हो जाऊं, यह है साक्षीपन की स्थिति। कर वो रहा है, नाराज मैं हो रहा हूं, दुखी मैं हो रहा हूं, इसलिए साक्षी दृष्टा स्थिति माना अलग से देखना। तो जब हम अलग से देखेंगे निर्लिप्त भाव से तो उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आएगा। और दूसरा अभ्यास है इस समय बाबा सदा मेरा साथी है, साथी को सदा साथ रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है और उसके साथ ही रहेगा जो समान है। हम सब बाबा के समान बिल्कुल स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, प्यार से मीठा बाबा, प्यारा बाबा को और बाबा को अपने साथ कंबाइंड कर लो, अलग ही कोई ना कर सके। साथी साथ है, साक्षी दृष्टा स्थिति है और सारथी बन करके चल रहे हैं। इस रथ का मैंने आधार लिया है, ये रथ है, मैं इसका सारथी हूं। ये तीनों अभ्यास करेंगे तो मन अपने आप शक्तिशाली हो जाएगा और बाबा की शक्तियां आपको मिलेंगी और आपके द्वारा अनेकों को मिलेंगी। यही है मनसा सकास, शक्ति मिलेगी, उमंग मिलेगा, कोई को हिम्मत मिलेगी, जो जिसको जरूरत है, क्योंकि निर्बल आत्माएं हैं। ब्राह्मण परिवार में भी कई आत्माएं युद्ध में ही समय दे रही है, इसलिए आप सब शक्तिशाली बन करके भट्टी में आए हो। इतना अच्छा चार्ज हो करके जाना जो आपके द्वारा अनेक ब्राह्मण आत्माओं को और अनेक कमजोर आत्माओं को कुछ न कुछ सहयोग मिले, ये भी एक सकास है। सहयोग मिले ये भी सकास है, हिम्मत मिले, उमंग आए, जो निराश है, उदास है, हताश है, होपलेस है, उसमें होप पैदा कर दो, ये सकास है। ठीक है, आशा की किरण जग जाए, हम कुछ कर सकते हैं। बेचारे कितने निराश हो रहे हैं, पता नहीं कल क्या हो जाएगा। आजकल YouTube चैनल खोलोगे ना, 32 में हो जाएगा, 28 में हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, पता नहीं कौन कौन सी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे होना तो है ही, होना तो है ही, कलयुग को जाना है ना। बच्चे निश्चिंत रहना चाहिए, हम विनाश का भी आह्वान नहीं कर रहे हैं, हम तो कल्याण का आह्वान कर रहे हैं, सबका कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा? जब विनाश होगा तो कल्याण होगा, विनाश के बिना कल्याण नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी सृष्टि है, अति की ओर जा रही है, इसका अंत ही चाहिए। तो बाबा हम सबसे ऐसा योग करा रहा है, कहता है मुझे कभी कभी आता है, ब्रह्मा बाबा के शब्द में सुनाता हूं, कि मैं बच्चों की ज्वाला स्वरूप याद से इस वृक्ष को भस्म कर दूं। ये ब्रह्मा बाबा को संकल्प आता है, खुद नहीं कर, कहता बच्चों के योग की अग्नि से इस पुराने वृक्ष को खत्म कर दूं, दुख खत्म हो जाए। वृक्ष तो अनादि अविनाशी है, पुराना खत्म होगा नया चलेगा, कलम तो लग गई है ना, कलम में आ गए ना आप सब, विनाश नहीं होता कभी, परिवर्तन हो जाता है। तो पुराना वृक्ष जाएगा, नया आ जाएगा, सत्युग आ जाएगा। तो हम सब कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम कल्याण नहीं चाहते किसी का, विनाश अकल्याण के लिए नहीं करना चाहते, कल्याण है, क्योंकि उन सब आत्माओं को मुक्ति मिलेगी, सब शांत में बैठेंगे जाके बाबा के पास। और जो हीरो पारधारी है वो नई दुनिया में आएंगे। तो आप सब हीरो पारधारी है ना, कौन कौन हीरो पारधारी, सत्युग में आने वाले कि मोक्ष चाहिए? कोई कोई होंगे मोक्ष मांगने वाले, हैं? बाबा के बच्चे तो कहते हम कोई ऐसे थोड़ी हैं, हम तो पूरा 84 जन्म पाठ बजाएंगे, हीरो एक्टर है ना। चलो के ओम शांति, 3 मिनट योग करके, 3 मिनट योग करके सब अपने भ्रकुटी के आसन पर बैठो। इस शरीर से अलग मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, बिल्कुल हिलना नहीं, बिल्कुल अटल एक रस।
Thank you.
दिल से हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक हाथ से ताली बजाकर इतनी सूक्ष्मता में लेकर के सबको महसूस हुआ, इतनी गहराई में ले जा करके हर आत्मा इस मनसा सेवा को कर सकता। हर आत्मा में कितने अच्छे मम्मा के एग्जाम्पल्स को देख करके, बाबा की बातों को सुना करके, कैसे हम सभी दीदी की भी बातों को भाई साहब ने सुनाया, कैसे हम अपनी मनसा को पावरफुल बनाकर हमारी मनसा सेवा, हमारी स्थिति से अनेकों की सेवा, स्वयं की स्थिति कैसे हम ऊंच बनाए, बहुत गहराई से। और बार बार हम इस चीज को भाई साहब रिपीट करेंगे, नोट भी किया है, इतनी गहराई आपने स्पष्टीकरण, मुझे लगता है यूट्यूब के माध्यम से भी ये प्राप्त होगा, सही है भैया? हाँ भैया, यूट्यूब के द्वारा भी ये क्लासेस जा रही है ना? हाँ देखो, आप लोग इसका और सुनना हो तो यूट्यूब के माध्यम से भी और इसको सुन करके बहुत गुह्यता गहराई भाई साहब ने स्पष्ट किया। बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद भाई साहब। भाई हमारे जो बाबा के विशेष रत्न ना, इतने दिन की जो तपस्या ना, मक्खन निकाल निकाल करके एक घंटे में दे देते। हम लोग कितने भाग्यशाली है, इतने सालों की आपकी तपस्या, इतने सालों का आपका ज्ञान योग जो बल है, मक्खन निकाल करके आने वाले हम सब के लिए सोचते हैं कितना हम दे दे, कितना इनको भरपूर कर दे, तो सारा सार हम फील करते हैं एक घंटे में, वो सारा मक्खन हमें मिल गया। अभी इस मक्खन को खाना है और हजम करना। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति।